તારીખ 5/4/1991 શ્રી દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ પ્રકાશ બોલ નંબર 359 362 380 387 અને 393 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું પાવાપુરીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 37
जिसको शरण के पुनर्मान स्वभाव की महत्ता का भान है उसको गौर ज्ञान दुर्ज्ञान के पर्याय की महत्ता नहीं आती। भगवान से वर्षा के जिसको गौर ज्ञान की महत्ता आती है उनको अनुज्ञान स्वभाव के महत्ता का भाव नहीं। परमागम सारमा गुरुदेव नाम चुनाव इंद्रिय ज्ञान नो रस चढ़ी जाए छे, ज्ञान नो रस चढ़े એને અતિન્દ્રિય જ્ઞાન ના રસ થી દૂર થઈ જાય છે, વિરુદ્ધ રસ હોવાને લીધે, રસ વિરુદ્ધતા હોવાને લીધે, વિરુદ્ધ તત્વનો પરતત્વનો રસ છે। સમય દ્રષ્ટિ નો તો સવાલ જ નથી કે એમાં રસ આવે કે એની મહત્તા આવે, એને તો પોતાના પૂર્ણ જ્ઞાન સ્વભાવ નું ભાન છે એટલે એને ઉઘાડની મહત્તા આવવાની નથી। જેને ઉઘાડની મહત્તા આવી જાય છે કારણ કે એની દ્રષ્ટિ નીચે છે, પોતાથી ઓછા ઉઘાડવાના નહીં જોવે છે, એની સામે જોવે છે એટલે એને મહત્તા આવે છે। પોતાના જ્ઞાન સ્વભાવ સામે જોવે તો એને મહત્તા ન આવે, દ્રષ્ટિ ફેર છે। थकान नहीं लगेगी, सोने आदि के भाव में भी दुख लगेगा, निंद्रा में भी थकान लगेगी। सहज पुरुषार्थ के साथ सहज निंद्रा कृपा अविनाभावी रूप से रहती है, तथा सोने आदि के भाव में तथा निंद्रा में भी थकान मालूम पड़ती है, ऐसा ही सहज पुरुषार्थ का स्वरूप है। स्वस्वभाव के अवलंबन में निर्विकल्प सुख सहज वर्तता है, जबकि स्वरूप के विश्राम धाम के अवलंबन को छोड़कर शरीराश्रित विश्राम के विकल्प में या शरीर के शरीराश्रित विश्राम के अवलंबन में सुख कैसा, वह विकल्प तो स्वयं ही दुख हो गया। निज विश्राम धाम ना अवलंबन मा सुख छे, पोताना विश्राम धाम ने छोड़ी ने कोई पण अन्य अवलंबन मा दुख छे, पछी ते निंद्रा होय ગમે તે પદાર્થ હોય, જેમણે સુખની કલ્પના કરી હોય बहुत विकल्प चलते हैं, उनको आकुलता भी बहुत होती है, बहुत चलते हैं उसको आतंकता भी बहुत होती है। तो उस विकल्प मंदावस्था में विकल्प शांत होते हैं, विकल्प इतने जागृत अवस्था में बहुत चलते हैं, ऐसे निंद्रा में तो नहीं चले, तो उसको आराम मिला ऐसा लगता है मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। शारीरिक परिश्रम माने तो शारीरिक रूप से लगेगा, मानसिक परिश्रम माने तो मानसिक रूप से लगेगा। और ये निराकुलता जो विश्राम धाम आत्मा है उसमें जो आराम मिलता है स्थिर रहने से या ठहर जाने से, उसका तो पता भी नहीं है, मतलब तो उसकी कल्पना भी नहीं है, तो उसको ऐसा लगता है ये कैसे निंद्रा में थकान लगे वो कैसे, थोड़ा विचित्र लगने का ये कारण है। तो उसमें शांति कैसी है और कितना आराम है, और जिसको नहीं पता है उसको तो दो ही आराम आराम इधर कल्पना है और ये परिश्रम की कल्पना है मानसिक और शारीरिक, सोना निंद्रा लेना ये आराम की कल्पना, स्वरूप में दिशा वो कैसा वो पता नहीं, वो बिल्कुल अनजान है, इसलिए दोनों उसको आराम को थकान कह दे रहे, निंद्रा वाले या सोने आदि आराम को थकान कह दे रहे, ये बात अपने अनुभव से अनुकूल नहीं लगती, उनका अनुभव है उससे अनुकूल नहीं लगती, वो कैसा हो सकता है। ये सब अनुभव का विषय है, शास्त्र में तो क्या ऐसी बात आ सकती है, जैसे एक सूक्ष्म मारी समझा था टीका में ऐसी बात है कि श्रुत ज्ञान के सूक्ष्म विकल्प जो आत्मा संबंधित है या स्वरूप के संबंधित जो विकल्प है उसमें भी आकुलता उत्पन्न होती है, ये बात आएगी इसमें। लेकिन वहां तक भी बहुत कम लोग पहुंचे हैं, न्याय से और विचारते हैं ठीक है ये विकल्प है ये नहीं विकल्प है, इसलिए विकल्प में आकुलता है क्योंकि विकल्प का तो अनुभव है, लेकिन निंद्रा में जाती है तो विकल्प नहीं है, जागृत अवस्था में जो विकल्प चलते हैं मन के ऐसे निंद्रा अवस्था में नहीं चलते हैं, तो निंद्रा अवस्था में उसमें थकान और उसमें दुख वो कैसे है ये पता नहीं चलता है, क्योंकि वो निर्विकल्प सुख का पता नहीं।
जागृत अवस्था में जैसे विकल्प हों वैसे भरे ही नहीं, लेकिन विकल्प है निंद्रा अवस्था में, निर्विकल्प पता नहीं,
निर्विकल्प नहीं स्थूल विकल्प नहीं है, जैसे निंद्रा आगे थकान के वर्ष उसको ऐसा लगता है अरे 4-6 घंटा कैसे चला गया पता ही नहीं चला, बट अभी सो जागृत हुआ घंटा निकल गया कैसे निकल गया ऐसा होता है, उसका विकल्प महसूस नहीं किया, उसको आराम मिला सुख मिला ऐसा क्या लगता। जिसको निराकुल चैतन्य स्वभाव में जम जाना वो क्या चीज है, पर उसमें क्या आराम है इसका जिसको पता वो ही उस दुख को समझ सकता है, तो उसमें भी दुख है उसमें भी थकान है, तो उसका पता चलता है, तो बिल्कुल अपरिचित विषय होने से आश्चर्य लगता है।
उनको बात तो थोड़ी सूचित कर देती है,
नहीं है
का कारण
जब मैं जो करंट चलता है आत्मरस स्थिर प्रवाह में है उसका एक प्रवाह तो उस प्रवाह में निद्रा का जैसे किसी भी कार्य में तरस आता है तो निंद्रा नहीं आती जैसे दिन में निंद्रा आती है इसका मतलब क्या इतने आप किसे सुनते पढ़ते पढ़ते किताब पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते कहाँ रस नहीं लगता रस लगे तो निंद्रा नहीं आ सकती बाह्य विषयों का रस के अभाव में ही निंद्रा का संभव हो सकता है मुनियों को निंद्रा का इसका मतलब क्या है उनका तो घर में जो रस है वो तो उतना तीव्र है निंद्रा आई नहीं सकती और वैसे ही जैसे शारीरिक संबंध कहते हैं जो आदमी पेट भर खाता है उसको निंद्रा आती है वैसा उनका खान पीन भी नहीं है उनका दोपहर में एक रुपये खाना वो जो पेट भरते तो वो खाते खड़े खड़े खाने में पेट भर के खाए नहीं जाता वैसे ये दोपहर में खाने में और बैठ करके खाने में फर्क है कि नहीं है वो तो हमेशा खड़े खड़े खाते हैं इसलिए वैसे ये भी कारण उसको नहीं है न कोई भौगोलिक निमित निमित एक संबंध वाला भी कारण न कोई विकल्प के थकान वाला भी बात विकल्प भी इतनी थकान नहीं है निंद्रा आने के लिए जितना भी समय है उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति में लगाना है उसको जानते हैं कि अपने पास समय का वक्त बहुत कम है तो काम करना है हर दिन काम करना है इतनी दौर स्वरूप में लगा सके इतनी जगह ने तो इसके पीछे पड़ गए हैं शास्त्र में नहीं है फिर भी करते हैं
शरीरासन के विश्राम और निंदा अनुग्रह ऐसे विकल्पों में अपने स्वरूप को जो विश्राम धाम का से दूर जाना होता है आपका पता चले तो ध्यान बात को ये विश्राम धाम है इसमें धन जाना है इसलिए विश्राम उसे बाहर निकल करके विश्राम की कल्पना है बहुत ही रस लिया शास्त्र चारित्र में है दृष्टि में क्या जिस प्रसाद से समय दर्शन होता है उसके पार करता है, तथा वो दशा में जो प्रसाद की पार करता है उसमें कितना बड़ा तो बहुत बड़ा और समय दृष्टि को
कई बार ऐसे लिखते हैं कि इतनी बाह्याकार प्रवृत्ति हो नहीं सकती है, लिखने में विकल्प नहीं चलते, प्रवृत्ति नहीं हो सकती, छोड़ देते हैं, कोई पत्र लिखते लिखते छोड़ देते हैं। कि जो चलते चलते अंदर में चले जाए, खाते खाते अंदर में चले जाए, बोलते बोलते अंदर में चले जाए, उसके पहले कोई विकल्प तो नहीं है, मुझा वैसा कोई विकल्प नहीं है, बिना विकल्प के शोध हो जाता है, कर्म कितना खुश हो गया तो साथ का, ये तो ये बात को मतलब वो गड़ाई बन के आते हैं।
जो कर पा लिया, जो मिला नहीं मिला, मिल गया तो मिला, वो भी वो होने के उपरांत नहीं। अब फिर ट्रस्टी लोगों को रिपोर्ट लिख के देना,
एक साइकिल पर का सामान आया था
ऐसे साधु को साधु मानना ही दोष हो जाए, अनुमानना का दोष है।
उनको पोषण करते हैं तो हमारा दोस्त है, उनके पुष्पण
उनकी पोशाक को मानते हैं, उनको नहीं मानते हैं, पोशाक को पोशाक धारण की
है, उनके वेश को मानते हैं, उनको नहीं मानते हैं,
उनके वेश को मानते हैं, उनके प्रति तो समझी कि वो भावना कहाँ है, उनके प्रति तो भावना रह नहीं सकती है, जो भी थोड़ा मैं समझता है, किंतु वेश को मानना
संसार में तो हम ऐसे नहीं करते। जैसे कोई अच्छा कपड़ा पहन करके हमारे यहाँ आते हैं, हम कहते हैं कि भाई हमको हमारा जो जेब कट गया है, हमको 500,000 रुपया चाहिए, आपको कल देने को आ जाएंगे, तो इसका ड्रेस देख करके हम दे देते क्या, अनजाने आदमी का फटा हुआ कपड़ा नहीं है, अच्छा है, साफ सुथरा है, टू डेट है, इसलिए हमको तो ऐसा तो नहीं करना। प्रैक्टिकली हमारे जीवन में तो हम ऐसा नहीं कर, ड्रेस देख करके सज्जन मान ले, ड्रेस देख करके हमको शरीर मान ले, ऐसा तो नहीं मान। वहाँ तो मैं ऐसे शंका से देख अच्छा कपड़ा पहन करके हुए हमको ठगने का नहीं आया, चीटिंग का शंका कर। इसी का नाम अंधश्रद्धा है।
पूज्यता का प्रश्न है, पूज्यता वस्त्रों की नहीं महू की है, महू के भाव नहीं है, नाम वैसे नहीं है, किस बात की पूजा?
जिसके पवित्र दशा नहीं है उसको पूज्य बना कैसे? पूज्य बना तो पवित्रता के कारण से होता है। अभी ये पवित्रता नहीं होते हुए भी पूज्य बना मानते हैं, और सम्यक दृष्टि को पवित्रता प्रकट हुई फिर भी पूज्य बना नहीं मानना, क्या अंतर बताओ? ये ज्यादा खराब है। पवित्रता है कहे तुझे पना कर नहीं हमने, ये ज्यादा खराब है। फिर वो तो जानते ही नहीं क्या पवित्रता है क्या नहीं, कोई हम तो वेश को जानते हैं, वेश ले लिया, हम तो दूसरा को समझते नहीं, वो तो कहते हम समझते हैं फिर भी नहीं मानेंगे, तो उनकी वक्रता ज्यादा है। इनको ये कहो कि इनसे भी तुम कम योग्यता वाले हो, ऐसी बात होगी। धर्म पूज्य है, फिर धर्म क्यों नहीं? हमें पूछिए फिर तुम भी क्यों नहीं, कौन सा न्याय है इसमें?
पूज्यताओं के रूप का वर्गीकरण करता है
ये आप कह सकते हैं कि देव को पूरा धर्म है, मुनिराज को अधूरा धर्म है, फिर भी मात्रा में कुछ विशेष है, और ये बिल्कुल अल्प मात्रा में है इसलिए हम उसको पूज्य नहीं मानते, ऐसा कहेंगे इससे क्या ज्यादा कहेंगे, लेकिन जाति तो वही है, अल्प मात्रा में हो या विशेष मात्रा में वही जाति, जाति में क्या फर्क है? वहां जो स्वरूप आचरण प्रकट हुआ ये यथाख्यात चारित्र की जो जाति है वही जाति का है, जो बाहर में बसता है पूर्ण चारित्र होता है, इसकी जाति कौन सी के स्वरूप आचरण, इधर चतुर्थ गुण स्थान में जाति कौन सी के स्वरूप आचरण बात करते, घर पे वेवाई का नौकर आएगा तो उतना ही अच्छा ट्रीटमेंट देगा, आपके लिए चिट्ठी भेजी है मैं वहां से आया हूँ, जरूरी बात है इसलिए मैंने पर्सनल चिट्ठी लेकर भेजा है, डाक में नहीं डाली, कितना आदर करेगा उसका, वहां वो न्याय नहीं लगाते कि वे भाई कहाँ है, ये तो इनका नौकर है और जाति का भी क्या जाने कौन सी जाति का हो, तीन लोग का नाथ उसके वशीभूत हो गया है, फिर जिसको गर्व नहीं है गौरव नहीं है, इनकी कैपेसिटी कितनी है, तो जो भी जितने भी वो स्थान में हो उसका पोजीशन तो एक सरखा है, इसके पोजीशन में संपत्ति एक सरखी है, इसको ज्यादा कमता है, ऐसा ड्रेस कोई बंदर को पहना देने तो कोई मानेगा क्या, बेस को मानते तो बेस को मानते, मनुष्य ने पहना या बंदर ने पहना है हम नहीं जाने, हम तो बेस उसका देखते हैं, कवि ने कहा है बालानाम पश्यन्ति लिंगा, जो वायु चिन्ह को देखते हैं उसको हम बाल बालक कहते हैं, बाल बुद्धि अभी हमारे वो तिरिज लोग तो बंदर तो वस्त्र भी नहीं पहनते, कितने त्यागी है तो इतना वस्त्र पहने दो, बंदर लोग तो पहनते ही नहीं,
खाने की व्यवस्था नहीं
है,
और खाने की व्यवस्था नहीं है
न खाने की न रहने की, त्यागी नहीं है का? तेरे इंच कोई त्यागी नहीं है, गए गैया है भैंसा है बकरी है वो त्यागी नहीं है, ਚਾਲ ਵਧੀਆ ਕੈਸਾ
जो स्पष्टीकरण दिए है उनका सबका जिन जिन स्पष्टीकरण दिया वो बोल ले रहे उनका भी आशा
संसार में भी जो बहुत हाई पोस्ट पर होते हैं उनकी व्यवस्था का विकल्प वो नहीं करते नहीं कर सकते जैसे प्रेसिडेंट का खाना है इनके नीचे वाले सब संभालेंगे उनके दिमाग में इतनी बातें बड़ी बड़ी डिसीजन लेने की
ज्यादा इम्पोर्टेंट बात
हाँ तो हम इम्पोर्टेंट वाली बात पर ध्यान दे ही नहीं सकते सांसारिक विषय में भी इतना हो सकता है कि प्रेसिडेंट बुश है इसका खाना इसकी टीम संभालती है इसका इस मुनिराज को कितना इम्पोर्टेंस है केवल ज्ञान देने का वो खुद कर ही नहीं सकते
उसके जीवन जरियात की वो चीज है फिर भी उसके बारे में वो विचार नहीं करते उसके लिए तो जीवन जरियात की चीज है
उनको तो थोड़ा भी अनुकूल नहीं पड़े तो उसका दिमाग गर्म हो जाए इनके तो इतनी कमजोरी है फिर भी वो इस विकल्प को कर नहीं पाएंगे ये हमारा काम है ऐसा बोलेगा ऐसा बनता है तो कोई ठीक बनाना है ठीक बनाने को कहना है कोई हमारा काम है क्या
कहना भी हमारा काम है क्या कहना भी हमारा काम है
हमारा काम है क्या आई थिंक
उल्टी में डॉक्टर से ये हुआ है वहां चीज का साथ
ये तो आप देखो इसके रसाला तो पता चल जाए
ये तो विश्व का सबसे कॉस्टली प्लेन बना है विश्व का सबसे कॉस्टली प्लेन बना है इसके लिए अरबों खरबों रुपए की लागत से एक प्लेन बना है जिसमें ये जाएंगे
क्योंकि बहुत महत्व वाले काम को संभालते हैं ये परमात्मा पद का काम इससे भी कम महत्व वाला है क्या जो मुनिराज करते हैं इसलिए उनको कोई विकल्प की फुर्सत
नहीं
कर नहीं सकते करना चाहे तो कर नहीं सकते चर्चा ही चलती है मांचन
नहीं
ये सिस्टम बेटर है बढ़िया है सुनते रहना उसमें कभी उपयोग दूसरी ओर चला जाता है चर्चा में ज्वाइंट होने से उपयोग को विषय मिलता है 393 सत्य की तीव्र झंझना से ज्ञान सहजी खुल जाता है। प्रश्न समझ नहीं हुए तो उत्तर, अरे तीव्र दिवस हो गई तो समझ भी आ जाएगा, समझ भी आ जाएगी। जिज्ञासा ज्ञान को खोल देती है। जिस विषय की जिज्ञासा हो गए तो ज्ञान में उस विषय को ग्रहण करने का अवकाश हो जाता है। सत्य की जिज्ञासा में सत्य को ग्रहण करने का अवकाश हो ही जाता है। जिज्ञासु जीवे सत्यनो स्वीकार थवा अर्थे अंतर विचारना स्थान मा सत्य ने समझवानो अवकाश अवश्य रखो जोइए। जो सत्य को ग्रहण करने का अवकाश रखता है उसी को जिज्ञासु कह सकते हैं। और जो सही जिज्ञासा में होते है उसको नहीं समझ में आवे ऐसी बात है ही नहीं, समझ में आ ही जाएगी। ये जिज्ञासा आते हैं
इसको काम नहीं करना तो ये बहाना ढूंढा
है,
इसको काम नहीं करना तो ये बहाना ढूंढा।
हम समझते नहीं इस बात को, हम समझते थे जरूरत पड़ती है तो हर बात को समझने का कोशिश करता है जी। जैसे बिरला है उद्योगपति, उसके जितने भी इंडस्ट्री चलते हैं क्या वो खुद सब टेक्निक को जानता है? ये चीज कैसे बनती है, वो चीज कैसे बनती है, उनके जो टेक्नीशियन है वो जानते हैं। वो तो उतना ही जानते हैं कि टेक्नीशियन को कैसे खरीदे जाए, वो उनको आता है। टेक्नीशियन उसको खरीद बेचान आता है, इससे ज्यादा उसका मतलब नहीं है। कोई भी चीज खरीद सकते हैं, कोई भी चीज बेच सकते हैं, कहाँ से खरीदना कहाँ बेचना वो उसको आता है, बाकी सब बनता है। इसको सैकड़ों इंडस्ट्री होती है, क्या करें, कितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको वो भी पता नहीं, एक चीज बनने में कितनी चीज चाहिए। उसका प्रोसेस डिपार्टमेंट वाला जो जानता है उतना वो नहीं जानता होगा।
स्टोर कीपर वाला प्रोसेस डिपार्टमेंट वाला है तो अलग होता है, स्टोर कीपर वाला जितना जानता है उतना ही वो नहीं जानता। उसको प्रयोजन हो रहा है, उसको प्रयोजन मिलना कैसे?
ये कभी ऐसा कहेगा कि हम इस बात को समझते नहीं है इसलिए इसका कारखाना नहीं लगाएंगे? उसको ये पता चला कि इसमें मुनाफा ज्यादा है लगाएंगे। इसका ज्ञान है इसके पास मुनाफा का अच्छी तरह, वो बताओ वो कैसे मिला, तनों में मिलता है तोला में जाता है। बस हो गया हो गया, अब कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मिलता है टनों में जाता है।
तो इसकी टेक्नोलॉजी यहाँ नहीं है तो दुनिया में कहीं तो है।
जैसे एक टीवी है तो उसका जो वजन है कितना, 10 किलो 15 किलो 20 किलो, उसका लगता है 10,000 12,000 लगता है। तो इसका जो रॉ मटेरियल है वो तो टनों में मिलता है, जो भी धातु है, वायर है, सीसा है, लोहा है या तांबा है, पीतल है, तो टनों में मिलता है, जाता है किलो में, उतना ही इसको तो देखना है, उसमें सब समझ जाता है, शॉर्ट टाइम में समझता है। जहाँ तक जैसे अपना सत्य स्वरूप है, त्रिकाल सत्ता को सत्य कह रहे, सत्य शब्द सत्ता से आया है, और सत्ता है वो सम्यक दर्शन का विषय है, स्वरूप सत्ता वो सम्यक दर्शन का विषय है, इसलिए उसका जानने का विषय को सत्य बोल लिया। तो सत्य क्या है इसके लिए ओपन माइंडेड रहना है, आत्मा ऐसा है ना वैसा है वो नहीं करना है, जो विकल्पातीत चीज है, मनातीत चीज है, उसको विकल्प में नहीं देना है, ऐसा समझा है, ऐसा जाना है, मैंने ऐसा पढ़ा है, ऐसा सुना है, कोई बात नहीं। निर्विकल्प तत्व है, मनातीत तत्व है, वो जैसा है वैसा ज्ञान में नहीं आवे, तो उसका कोई खाली जगह की पूर्ति नहीं करनी है, जिज्ञासा चालू रखनी है। जैसे ये बात तो खुली है कि आत्मा है सो परमात्मा है, उसकी मान्यता उसको सम्यक श्रद्धा कहते हैं, बस हम मानने लगे हम तो परमात्मा है, ऐसा चलता है कि जहां तक उसके कुछ अंश प्रकट नहीं हो गए वहां तक तो जिज्ञासा में रहना चाहिए, भले ही जान लिया हो कि आत्मा सो परमात्मा, फिर भी जिज्ञासा में रहना चाहिए। बुद्धि में आया कि आत्मा सब परमात्मा है, तत्व है तो पूरा होना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए, तो ऐसा निर्णय नहीं करें, निर्णय करने से फुल स्टॉप आ जाएगा, हम तो जानते हैं आत्मा है परमात्मा है,
जिज्ञासा हो जाता है,
जिज्ञासा खत्म हो जाएगी। जिस जिज्ञासु को जिज्ञासा की भूमिका में जिज्ञासा नहीं रही उनकी तो खत्म होगी बात, उसका कोई विकास होने का फिर अवकाश नहीं है, रास्ता बंद हो गया। निर्णय करने की भूमिका में एक प्रश्न है कि आत्मा है तो वचन से तो अगोचर वचनातीत तो है ही, लेकिन मनातीत है, विकल्पातीत है, अब जो मन से निर्णय करता है तो क्या बात विरुद्ध नहीं हो गई क्या, ये प्रश्न है। मुद्दा उतना है कि हम मेरे मन से निर्णय करें कि नहीं करें।
जब हमारे महापुरुष को निर्णय करके भेज चुके हैं तो हमको दोबारा निर्णय करने की क्या आवश्यकता है?
तो
दे चुके हैं
उसने जो निर्णय किया वो उसके ज्ञान की पर्याय थी, हमारे ज्ञान में क्या कहाँ हुआ है उसने बता दिया कि ये समस्या का ये समाधान है। लेकिन हम तो समस्या में खड़े हैं, समाधान तक पहुंचे नहीं।
विश्वास
हमको टैली करना चाहिए। समाधान इसलिए उपयोगी है जरूर कि जैसे गणित का दाखला दिया कि उत्तर साथ में दे दिया, जहाँ तक वो उत्तर नहीं मिले वहां तक हमें ये समझना चाहिए कि हमको आता नहीं है गिनने को, क्योंकि उत्तर नहीं मिलता है। तो जो पूर्वजों ने महापुरुषों ने जो समाधान दे दिया है इसका मतलब ये है कि हम मिलान करते रहे और जहाँ तक नहीं मिले वहां तक वो माने के इस विषय में अनुभिज्ञ है, जानकार नहीं है। तो उत्तर जान लिया तो मान लिया कि हमको गिनने को भी आता है, ऐसा हो गया है। ये तो गड़बड़ हुई ना।
महापुरुषों ने कहा कि संसार में सुख नहीं है, किसी विषय में सुख नहीं है, इसका निर्णय करना पड़ेगा। तुम की बात को
इसका निर्णय कैसे करेंगे, कैसे करेंगे कि जब संसारिक प्रसंगों में जब हम इस वक्त गुजरते हैं संसारिक प्रसंग, उस वक्त हमें दुख होता है या सुख? अगर हमें दुख होता है तो हमने वो माना बराबर है, लेकिन हमको सुख होता है तब हमने कहा माना?
उससे टैली कर सकते हैं, सुख मानती है हमारी भूल है, वो बात मस्तिष्क में रहेगी।
हाँ,
उससे टैली करके मान सकते हैं कि हमारी भूल है।
भूल भूल कहाँ है वो तो फिर ढूंढना पड़ेगा ना। हमारी भूल है तो भूल तो सुधारनी पड़ेगी। भूल का मतलब क्या है? जिस विषय में हम भूल नहीं हो गए उस तरह से हम नहीं चलते। जैसे सुख और दुख तो अनुभव का विषय है, हम उनको किसी प्रसंग में सुख लगता है तो उस वक्त हमें दुख नहीं लगा तो हमारी भूल कहाँ रही, ये जिज्ञासा का विषय होना चाहिए। इसकी खोज करें इस प्रकार से जाना चाहिए।
निर्णय में तरक्की तो खोज उसकी अंदर में विकल्पों में निर्णय हो गया, इसके बाद ही तो वो खोज
नहीं। निर्णय तो ऐसा हुआ कि जो उन्होंने कहा है वो सही है, लेकिन मेरे अनुभव में जहाँ तक नहीं आवे वहां तक ये इनके लिए सही है, मेरे लिए तो कहाँ सही हुआ है? कालांतर में तो खोज करेंगे तब तो होगा। ऐसे मान लेने से उनका मान लिया कि दुख है और हम अनुभव करते रहे कि हम उनको सुख हो रहा है, कभी पता चलेगा इस बात निवेदा को आएगा।
संसार दुख रूप है और असार है, ये तो सब दर्शन और सदा काल कहते हैं। संसार में इसकी अद्वितीयता है, असारता है, कौन सा दर्शन इसको निषेध करता
है? संसार में सुख
है
अपनी अधिकांश दर्शन,
मतलब इसको ऐसा ले रहे हैं कि ज्ञानियों के अनुभव वचनों को अपने अनुभव से जब तक संबंध ना हो यानी टेली ना हो तब तक उसने के जिज्ञासा की भूमिका में
स्वीकार करना, अपने अनुभव से स्वीकार करना। ज्ञानियों ने ये भी साथ साथ कहा कि मैं जो कह रहा हूँ मेरे अनुभव से कह रहा हूँ, तुमको ऐसे हानि भरनी है तुम्हारे अनुभव में लेकर के, जैसा मुझे अनुभव हो रहा ऐसा तुम्हें हो, जब भी तुमने मेरी बात स्वीकारी है ऐसा मैं स्वीकार करूँगा, तुम्हारा अनुभव मेरे से उल्टा होगा और तुम ये कहोगे कि मैंने तुम्हारी बात स्वीकार ली है तो ये तुम्हारी बात महापुरुष स्वीकारने वाले नहीं है, वो तो कहेंगे कि तुम खोटा आदमी है, तुम्हारा अनुभव दूसरा बोलता है और तुम्हारा विचार दूसरा बोलता है, तुम्हारी समझ और तुम्हारे अनुभव में अंतर है, ये बात हम स्वीकार नहीं करते।